आदर्श बालकों की अमर कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिमन्यु की कथा। वाचक स्वर है संज्ञा टंडन का।
महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे और द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति हो गए थे। दुर्योधन बार बार आचार्य से उलाहना देता हुआ कहता था, आप पांडवों का पक्षपात करते हैं, आप ऐसा ना करें तो आपके लिए पांडवों को जीत लेना बहुत ही सरल है। बार बार एक ही बात सुनते सुनते आखिरकार आचार्य उत्तेजित हो उठे और दुर्योधन से बोले, अर्जुन के रहते पांडव पक्ष को देवता भी नहीं जीत सकते। यदि तुम अर्जुन को मुख्य रणभूमि से किसी उपाय द्वारा दूर हटा सको तो शेष पांडवों को पराजित करना मेरे लिए कठिन नहीं होगा। ठीक है, मैं कल ही इसकी व्यवस्था करूंगा, दुर्योधन ने इस बात का भरोसा दिलाया। दुर्योधन के उकसाने पर सैकड़ों नायक वीरों ने अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी और युद्ध करते हुए उन्हें मुख्य रणभूमि से बहुत दूर ले गए। यहाँ द्रोणाचार्य ने अपनी सेना के द्वारा चक्रव्यूह नामक एक व्यूह की रचना की। इसके बाद उन्होंने पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा। जब युधिष्ठिर को सारी बात का पता लगा तो वे बहुत निराश और दुखी हो गए। पांडव पक्ष में एकमात्र अर्जुन ही इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रहस्य जानते थे और वे उनके बीच नहीं थे। अर्जुन के न होने से पराजय निश्चित जान पड़ती थी। चारों पांडव निराश अपने खेमे में बैठे थे कि तभी वहां अर्जुन पुत्र सुभद्रा कुमार 15 वर्षीय अभिमन्यु आया। उन्हें निराश देखकर अभिमन्यु ने कारण पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर ने वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी। सुनकर अभिमन्यु खिल उठा, बोला, धर्मराज निराश और चिंतित होने की जरूरत नहीं, कल मैं अकेला ही व्यूह में प्रवेश कर शत्रुओं का घमंड तोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर सभी पांडव चकित रह गए। भीम ने पूछा, बेटा तो क्या तुम चक्रव्यूह भेद का रहस्य जानते हो? हाँ वीरश्रेष्ठ, मैं उसका रहस्य जानता हूँ। किस तरह, ये रहस्य तुमने कैसे जाना? अभिमन्यु बताने लगे, उस समय मैं माता के गर्भ में था, तब एक दिन पिताजी माताजी को चक्रव्यूह भेद का रहस्य विस्तार पूर्वक बताने लगे। पिताजी ने चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ने की बात बताई। इतने में माताजी को नींद आ गई, तब पिताजी भी शांत हो गए और उसके आगे का विवरण नहीं बताया। इसलिए मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करके उसके 6 द्वार तोड़ सकता हूँ, लेकिन उसका 7वां द्वार तोड़कर बाहर निकल कर आने के रहस्य से अनभिज्ञ हूँ। अभिमन्यु की बात से उत्साहित होकर भीमसेन ने कहा, 7वां द्वार तो मैं अपने गदा के प्रहार से ही तोड़ दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर यद्यपि नहीं चाहते थे कि बालक अभिमन्यु को उस व्यूह में भेजा जाए, लेकिन दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। अभिमन्यु दिग्गज योद्धाओं की तरह प्रतिदिन के युद्ध में सम्मिलित होते थे। स्वयं अभिमन्यु व्यूह प्रवेश के लिए युधिष्ठिर से बार बार आग्रह करने लगा। आखिरकार युधिष्ठिर को उसका आग्रह स्वीकार करना पड़ा। दूसरे दिन प्रातःकाल नियत समय पर युद्ध आरंभ हुआ। द्रोणाचार्य ने व्यूह के मुख्य द्वार की रक्षा का भार जयद्रथ को सौंपा। जयद्रथ को भगवान शंकर से ये वरदान प्राप्त था कि अर्जुन को छोड़कर वो शेष पांडवों को परास्त कर पाएगा। अभिमन्यु ने अपनी भीषण बाण वर्षा से जयद्रथ को ऐसा विचलित किया कि वो द्वार छोड़कर व्यूह के अंदर भाग गया। उसके द्वार से हटते ही तीव्र वेग से अभिमन्यु अपना रथ व्यूह के अंदर ले गए, लेकिन उसके पीछे दूसरे पांडव व्यूह के अंदर जा पाते। जयद्रथ फिर द्वार पर आ डटा और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। पूरे दिन भर की जी तोड़ कोशिश करने पर भी जयद्रथ के आगे उनकी एक न चली और उनके हर प्रयास को निष्फल कर जयद्रथ ने उन्हें अंदर न जाने दिया। आखिर जयद्रथ को भी वर प्राप्त था। 15 वर्ष का बालक अभिमन्यु अपने रथ पर सवार व्यूह में प्रवेश कर गया था। चारों ओर से उस पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा हो रही थी, पर इससे न तो वो तनिक भी डरा और न ही विचलित हुआ। उसने अपने धनुष से पानी की झड़ी के समान चारों ओर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े और सैनिक कट कट कर गिरने लगे। रथ चूर चूर होने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। सैनिक इधर उधर भागने लगे। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य जैसे बड़े बड़े महारथी सामने आए, लेकिन उस वीर बालक की गति को कोई नहीं रोक पाया। वो दिव्य शास्त्रों को दिव्यास्त्र से काट देता था। उसकी भीषण मार से घबराकर आचार्य द्रोण और कर्ण तक को बार बार पीछे हटना पड़ा। एक पर एक व्यूह के द्वार को तोड़ता द्वार रक्षक महारथी को परास्त करता हुआ वो अबाध गति से आगे बढ़ता ही चला जा रहा था। इस तरह पिता द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर उसने 6 द्वार पार कर लिए। अभिमन्यु अकेला था और उसे बराबर युद्ध करना पड़ रहा था। जिन महारथियों को वो पराजित कर पीछे छोड़ देता वे उसे घेर कर फिर आगे युद्ध करने पहुंच जाते। 7वें द्वार का मर्म स्थल कहाँ है अभिमन्यु को ये ज्ञात नहीं था। इस पर भी ना तो वो थका हुआ लगता था और ना ही उसके उत्साह स्फूर्ति और चपलता में किसी तरह की कमी दिखाई पड़ती थी। दूसरी ओर कौरव पक्ष के सभी बड़े बड़े महारथी अभिमन्यु की मार से घायल हो गए थे। द्रोणाचार्य ने तब साफ कह दिया था, जब तक इस बालक के हाथ में शस्त्र और अस्त्र हैं, इसे जीतने की आशा नहीं करनी चाहिए। तब कर्ण आदि 6 महारथियों ने एक साथ मिलकर अन्यायपूर्वक अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। उनमें से एक एक ने उसके रथ के एक एक घोड़े मार दिए। एक ने सारथी को मार दिया और कर्ण ने उसका धनुष काट दिया। इस पर अभिमन्यु रथ पर से कूद पड़ा और तलवार हाथ में लेकर बिफरे शेर की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ा। शत्रु सेना में एक बार फिर भगदड़ मच गई। उस तरुण बालक को क्रूर शत्रुओं ने चारों ओर से घेर रखा था और अन्याय पूर्वक एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण कर रहे थे। अभिमन्यु का कवच और सिर का अस्त्र भी अंततः कटकर गिर गया। उसका शरीर बाणों के लगने के कारण बुरी तरह घायल हो गया था और उसके अंग अंग से रक्त की धाराएं बह रही थीं। जब अभिमन्यु के पास सब अस्त्र शस्त्र कटकर छिन्न विच्छिन्न हो गए, तब उसने रथ का चक्का उठाकर ही शत्रुओं पर प्रहार करना आरंभ किया। इस अवस्था में भी सामने से आकर उस पर आक्रमण करने का साहस कोई न जुटा सका। शत्रुओं ने पीछे से उसके सिर कवच रहित सिर पर गदा से प्रहार किया। इस प्रहार से घायल बालक वहीं धराशायी हो गया और इस तरह संग्राम में वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए उसने वीर गति प्राप्त की।
ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।